बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैतन्य चरितामृत के 23वें सत्र में। 23वां दिन हमारा आज चल रहा है। मध्यलीला हमने प्रारंभ की थी और उसमें आपको याद होगा पहले दो अध्याय जो है उसमें संपूर्ण शेष लीला इसका सारांश, तीसरे अध्याय में महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर में, चौथे अध्याय में माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति की महिमा, खीरचोर गोपीनाथ और उसके साथ साथ जो है गोपाल जी का प्राकट्य इनका वर्णन, पांचवें अध्याय में साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत और छठे अध्याय में जो है हमने सर्वम भट्टाचार्य इनका उद्धार ये देखा, सातवें अध्याय में महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं और वासुदेव इनका उद्धार, आठवें अध्याय में राय रामानंद संवाद और हरि बोल, और नवे अध्याय में हम लोग देखे कि किस प्रकार से नवे अध्याय में महाप्रभु का संपूर्ण दक्षिण यात्रा भ्रमण, दसवें अध्याय में महाप्रभु जगन्नाथपुर में पहुंच जाते हैं और सारे भक्त उन्हें आके मिलते हैं, ग्यारहवें अध्याय में बंगाल से भी भक्त आके उन्हें मिलते हैं और बेड़ा कीर्तन होता है, बारहवें अध्याय में गुंडीचा मंदिर मार्जन, तेरहवें अध्याय में जगन्नाथ रथ यात्रा, चौदहवें अध्याय में जो है वो हमने देखा हीरा पंचमी महोत्सव, पंद्रहवें अध्याय में महाप्रभु बाकी सारे बंगाल के भक्तों का गुणगान करके उनको विदाई देना, सर्वम भट्टाचार्य इनके घर पे प्रसाद और अमोघ इसका उद्धार, सोलहवें अध्याय में महाप्रभु का वृंदावन जाने के लिए दूसरा प्रयास, लेकिन कन्हैया नटशाले से महाप्रभु रामकेली में रूप सनातन इनको मिलकर पुनः वापस आ जाते हैं, अठारहवें अध्याय में झारखंड से महाप्रभु का वृंदावन के लिए जाना गमन और उसके पश्चात अठारहवें अध्याय में वृंदावन भ्रमण, और कल हमने देखा उन्नीसवें अध्याय में महाप्रभु भी वृंदावन से प्रयाग पहुंच गए हैं और वहां पर रूप गोस्वामी प्रयाग में महाप्रभु से दूसरी बार मिलते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से रूप गोस्वामी उन्होंने अपने राजमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जो अपनी संपत्ति थी उसका ठीक से बंटवारा करके वहां से वो पत्र लिखा था उन्होंने सनातन गोस्वामी को कि आपके लिए हमने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं किसी बनिए के पास रखी हुई है, उसका प्रयोग कर लेना और मैं और हमारा भाई अनुपम जिसका पूर्व नाम था श्रीवल्लभ हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से वो प्रयाग में आके महाप्रभु से मिलते हैं और वो प्रसिद्ध श्लोक नमो महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते इसकी रचना वहां पर रूप गोस्वामी द्वारा की गई, और उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु प्रयाग से फिर अड़ाईटाला जो गांव है वल्लभ भट्ट इनके यहाँ पर जाते हैं, वहां पे कुछ पास टाइम होता है, रघुपति उपाध्याय उनसे मिलते हैं, उनकी चर्चा होती है, वापस महाप्रभु जो है वो आ जाते हैं और दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु लगातार 10 दिन वहां पर जो रहे थे, रूप गोस्वामी को उन्होंने प्रमुख शिक्षाएं प्रदान की थी। उसमें से हमने देखा कल कि किस प्रकार से जो है वो हमारा कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ होता है, 84 लाख योनियां है, उसमें भी स्थावर जंगम है, उसमें भी जो जो चल है उसमें भी कई सारे पशु पक्षी आदि योनियां है, उसमें लिमिटेड है जो मनुष्य है। मनुष्यों में भी दो प्रकार है, कोई धर्म का आचरण करने वाले हैं, जो धर्म का आचरण नहीं करते, जो धर्म का आचरण करने वाले भी उसमें भी जो है वो और प्रकार पड़ सकते हैं, कि कोई केवल कर्म मिश्रित या केवल फल प्राप्ति के लिए या कोई दिखावे के लिए कर रहा है, और उसमें भी कई एकादा व्यक्ति होता है जो ज्ञानी हो सकता है, और उन ज्ञानियों भी कई सारे ज्ञानियों को मिलकर एकादा मुक्त हो सकता है, और ऐसे कोटि मुक्तों में एकादा कृष्ण भक्त दुर्लभ विरला पाया जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त ये दोनों दुर्लभ है। और इस प्रकार से भक्तिलता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। तो ये भक्तिलता बीज का महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। वास्तव में ये जस्टिस नहीं है एक घंटे में सब कुछ ले पाना, तो कई सारे भक्त विनती भी कर रहे थे कि इसे थोड़ा विस्तार से लिया जाना चाहिए। तो हमने ऐसा तय किया है कि आने वाला रविवार का भागवतम जो है उसमें हम लोग सुबह, जो रविवार को जिस दिन एकादशी है, सुबह 8 से 9 होगा, उसमें हम लोग ये केवल भक्ति लता की बढ़ोतरी और उसमें जो बाधाएं आती है, दो बाधाएं हमने देखी थी, एक थी वैष्णव अपराध की बाधा और दूसरी अन्य उपशाखाएं जो बढ़ती है जो जल को खींच लेती है अपने ओर और जिससे जो है वो सूख जाती है हमारी भक्ति लता, और इसलिए हम लोग भक्ति में आगे नहीं जा पाते। तो कई बार भक्तों का यह सवाल होता है कि इतने साल हम लोग साधना कर रहे हैं लेकिन हमारी भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब और अच्छे से, क्योंकि रूप गोस्वामी ने तो यहाँ पर महाप्रभु ने केवल एक संकेत मात्र दिया है, रूप गोस्वामी ने उसकी चर्चा विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में की है, उसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने माधुर्य कादम्बिनी में उसको विस्तार से लिखा हुआ है, और शुद्ध भक्ति चिंतामणि किताब में शिवराम महाराज ने उसके ऊपर और प्रकाश डाला है। तो इतना विस्तार से भक्तों के लिए बहुत आवश्यक जो विषय है उसकी विस्तार से थोड़ी चर्चा हम लोग रविवार के दिन श्रीमद् भागवतम सत्र में करेंगे। और इस प्रकार से कैसे 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और इन रसों में भी किस प्रकार से सर्वाधिक मधुर रस क्यों श्रेष्ठ होता है, ये सब महाप्रभु ने जो है वो रूप गोस्वामी इनको बता दिया था। और महाप्रभु वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पर पहुंच गए थे। तो आज हम लोग हमारा 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है महाप्रभु का सनातन गोस्वामी से मिलना और सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करना। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो जो सनातन गोस्वामी अभी वहां पर हम कैमरा लेके जाते हैं रामकेली में, रूप गोस्वामी तो वहां से चले गए हैं, अभी सनातन गोस्वामी बंदिस्त है। तो वहां का जो जेल का अधीक्षक था उसे बुलाते हैं सनातन गोस्वामी, और सबसे पहले अभी देखिए तो नवाब के मंत्री रह चुके हैं, तो कौन कौन सी युक्तियां वो लगा रहे हैं नवाब को पटाने के लिए, स्वयं के मुक्ति के लिए, ताकि महाप्रभु को मिल सके और भगवान की सेवा में अविरत ढंग से लग सके। तो सर्वप्रथम वो नवाब की स्तुति करते हैं, आप तो हमें जिंदा पीर जैसे दिखाई दे रहे हैं और सारे कुरानों के ज्ञान से आप अवगत है। तो इस प्रकार से उनका सबसे पहले स्तुति करते हैं, और दूसरे वो आध्यात्मिक लाभ का लालच दिखाते हैं। हमने कुरान से सुन के रखा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई बंदिस्त व्यक्ति को या किसी बद्ध व्यक्ति को मुक्त करने के लिए मदद करता है तो उस व्यक्ति को भगवान अपनी अच्छे से कृपा दे सकते हैं और उसको आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। तो उन्होंने आध्यात्मिक लालच दिखाया, और उसके पश्चात उन्होंने कृतज्ञता का भी प्रयोग किया कि मैंने यहां पर सरकार की सेवा में आपके लिए बहुत कुछ किया है, अभी आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए यहां से छूटने के लिए। और इतना सब बताने के पश्चात भौतिक लाभ भी प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि ये लीजिए 5,000 सुवर्ण मुद्राएं, ये आपके लिए मैं रखा हुआ हूं। तो वो अभी अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो अधीक्षक कहता है कि मैं आपको तो छोड़ सकता हूं लेकिन मुझे डर है कि नवाब को पता न चल जाए। सनातन गोस्वामी कहते उसकी चिंता मत करो, नवाब तो अभी उड़ीसा गए हुए हैं, उन्होंने कहा था या कई दक्षिण दक्षिण देश में गए हुए हैं, वहां पर आक्रमण करने के लिए जाने वाले थे, वो तो वहां पर है, और मैं यहां पर नहीं रहने वाला, मैं मक्का जाने वाला हूं, आध्यात्मिक तीर्थस्थल हमारा, और वहां पर मैं भगवान से मिलने वाला हूं। क्या सनातन गोस्वामी झूठ बोल रहे थे? बाह्य दृष्टिकोण से तो झूठ मक्का तो नहीं जाने वाले थे, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण से ठीक बोल रहे थे। वो कहां जाने वाले थे? वृंदावन जाने वाले थे, जो आध्यात्मिक धाम है, और किससे मिलने वाले थे? चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान है। तो वो एक प्रकार से झूठ नहीं था। तभी वो कहता है कि और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप नवाब को क्या बताना, ये तो मैं रहूंगा ही नहीं, नवाब को बता दीजिए कि शौच के लिए उन्हें नदी के तट पर लेके गया, गंगा के तट पे, और वहां पर वो अपने बेड़ियों के साथ में वो नदी में कूद गए, और हमने कई ढूंढने का प्रयास किया उन्हें, लेकिन नहीं मिले, और वो जो उनका देहांत हो गया नदी के अंदर, ऐसा आप बता दीजिए। फिर भी वो जो अधीक्षक था जेल का, वो थोड़ा सोचता है कि, लेकिन थोड़ा डर है, फिर भी सनातन गोस्वामी अभी भौतिक लाभ बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि आपके लिए 7,000 स्वर्ण मुद्राएं हम लोग देते हैं। फिर वो राजी हो जाता है और उन्हें छोड़ देता है वहां से। फिर भी सनातन गोस्वामी वहां से निकल पड़े, और वो अभी प्रमुख रास्ते से जाएंगे तो पकड़े जाने का भय भी था, क्योंकि वो मंत्री थे तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो पहाड़ी क्षेत्र चुनते हैं, अपने एक सेवक को साथ में लेते हैं जिसका नाम था ईशान, तो उसको साथ में लिया और वहां से चल पड़े, पहाड़ी क्षेत्र से जाते हैं। उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम था पातड़ा। तो पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र से जब जा रहे थे, क्योंकि अभी ये नया क्षेत्र है, कभी गए नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वहां पर एक जमींदार उस पातड़ा क्षेत्र में उन्हें मिलता है। तो सनातन गोस्वामी उनका कोई घर था, या ऐसा कहा जाता है कि कुछ होटल टाइप उनका एक था वहां पर। तो वहां पर सनातन गोस्वामी जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या हमारी मदद करेंगे यहां से थोड़ा पहाड़ी इलाका सेवकों के द्वारा पार कराने में। और जो जमींदार था उसके यहां पे एक ज्योतिष था, वो ज्योतिष उसने पहले ही जमींदार को बता दिया था कि ये लोग थोड़े रईस है, इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। और वो फिर वो जमींदार, उसकी मति उसकी तरफ थी 8 स्वर्ण मुद्राएं के ऊपर। तो वो फिर सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छे से स्वागत करता है, अरे क्यों नहीं आपको मदद, आपके लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप जाइए थोड़ा नदी में स्नान बीन करके आइए, अपना भोजन बीजन कीजिए, हम लोग आपको, मेरे कुछ सेवक भेज दूंगा, वो आपको मदद कर देंगे पहाड़ी इलाका पार करने में। और इस प्रकार से जब कहा जाता है, सनातन गोस्वामी जाते हैं नदी में स्नान करके पुनः आ जाते हैं, और उनका सेवक वहां तक फिर भोजन वगैरह पका के व्यवस्थित किया रहता है। सनातन गोस्वामी अभी वो नवाब के मंत्री रह चुके, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो वो पहचान गए कि जरूर दाल में कुछ काला है यहां पर, अति भक्ति चोरेर लक्षण, तो वो समझ में आ गया उनके। तो ईशान को बुलाते, ईशान को पूछते, ईशान कुछ है द्रव्य तुम्हारे पास? ईशान कहता है जी हाँ मालिक, 7 स्वर्ण मुद्रा है। वो अभी भी एक छुपा के बोल रहा है, 7 स्वर्ण मुद्रा है, सनातन गोस्वामी दे दो, मेरे पास दे दो। तो वो दे देता है। फिर सनातन गोस्वामी उस जमींदार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, ये लीजिए 7 स्वर्ण मुद्राए आपके लिए। तो वो जमींदार देख के भौचक्कर रह जाता है कि वो बताता है असलियत। वो कहता है कि आप देने से पहले हमें पता था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और अच्छा हो गया आपने दे दिया, नहीं तो हम रात को आपको मारने वाले थे, और अच्छा हो गया हम वो पाप से बच गए आपको मारने के। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मैं आपसे प्रसन्न हूं आपकी ईमानदारी देख के, ये स्वर्ण मुद्राएं आप फिर रख लीजिए। सनातन गोस्वामी कहता है जी नहीं भाई, ये मौत का फंदा कौन लेके साथ में चलेगा, आपने छोड़ दिया दूसरा कोई हमें मार देगा, नहीं चाहिए आप रख लीजिए। फिर वो जो जमींदार थे तुरंत 4 सेवकों को देते हैं उनके साथ में और कहते हैं रातों रात जो है वो इनको पार करा दो। तो वो पूरा पहाड़ी इलाका वो पार कर लेते हैं, और पार कर लेने के पश्चात अभी सनातन गोस्वामी ईशान को पूछते हैं, भाई ईशान और कुछ है स्वर्ण मुद्रा वगैरह तुम्हारे पास? ईशान प्रामाणिकता से कहता है मेरे पास 1 स्वर्ण मुद्रा बच गई है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि 1 स्वर्ण मुद्रा आपके पास रख लो और यहां से रफा दफा हो जाओ, चले जाओ वापस, मैं अकेला चला जाऊंगा आगे। और फिर वहां से महाप्रभु अकेले निकल पड़ते हैं आगे जाने के लिए। जाते जाते सनातन गोस्वामी अकेले अभी पर्वतीय क्षेत्र से जा रहे हैं, रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, जंगलों से जा रहे तो वस्त्र फट गए, तो न खा रहे न पी रहे हैं, लगातार चलते जा रहे, चलते 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 2-3 दिनों के पश्चात हाजीपुर करके गांव है वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर उनका बहनोई, उनके जो बहन है उनके पति श्रीकांत उन्हें मिलते हैं, जो एक सरकारी नौकर थे। जब श्रीकांत से मिलते हैं, श्रीकांत तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे सनातन बहुत समय हो गया मिले नहीं है। तो सारा वृत्तांत सनातन गोस्वामी श्रीकांत को सुनाते हैं, किस प्रकार से वो बंदी थे, कैसे छूट गए हैं, अभी कहां जा रहे हैं। तो श्रीकांत कहते हैं कि भाई चलो अभी आई गए हो तो दो तीन दिन रुक जाओ, थोड़े भद्र जैसे अच्छे से सभ्य व्यक्ति के कपड़े मैं आपको देता हूं, वो पहनो, खाओ पियो, थोड़ा देखो तबियत क्या हालत हो गया है तुम्हारा। सनातन गोस्वामी कहते एक क्षण भी मैं यहां पर रुकूंगा नहीं, मुझे बहुत शीघ्र जाना है महाप्रभु से मिलने के लिए। इतनी उत्कंठा थी सनातन गोस्वामी के अंदर, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। फिर वो जो श्रीकांत था उसको दया आती उनके ऊपर, और एक नई ऊन की जो है वो गुदड़ी कंबल वो उन्हें दे देते हैं, और उस कंबल को ओढ़ के सनातन गोस्वामी पुनः जंगल से जाते 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 वाराणसी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वाराणसी में पहुंच जाते उन्हें समझ में आता है कि महाप्रभु अभी वाराणसी में रुके हुए हैं, बहुत खुश और प्रसन्न हो जाते हैं और सीधा जाके, क्योंकि उन्हें पता है वाराणसी में महाप्रभु कहां पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं, चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पे। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर द्वार में बैठ जाते हैं, इतने नम्रता है कि घर की बेल भी नहीं बजाई, जब कोई दरवाजा खोलेगा तब मिल लेंगे। तो घर के बाहर जाके चुपचाप जो है वो बैठ जाते हैं। तो जैसे अभी बैठे हैं महाप्रभु को समझ में आ जाता है, वो तो सबके हृदय में विराजमान है। तो महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य से कहते हैं जाओ जाके थोड़ा बाहर देखो कोई महान वैष्णव आया है क्या। तो चंद्रशेखर आचार्य आते दरवाजा खोलते देखते कोई नहीं दिखता उन्हें, तो अंदर आते महाप्रभु को कहते महाप्रभु कोई नहीं है, कोई महान वैष्णव वगैरह कोई नहीं आया है यहाँ पर। महाप्रभु बोलते अरे महान वैष्णव नहीं आया है, कोई तो है, कोई तो होगा, हाँ एक फकीर दरवेश कोई बैठा हुआ है फकीर के वेश में। महाप्रभु कहते उनको बुला लाओ, वो बहुत बड़े भक्त है। और जब चंद्रशेखर आचार्य बुलाने के लिए चले जाते हैं, वहां पर महाप्रभु स्वयं चले जाते हैं और सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर देते हैं, क्योंकि इतने समय से वो निकल रहे थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे और फकीर के फटे फटे वस्त्र उनके साथ थे, तो इसलिए चंद्रशेखर आचार्य पहचान नहीं पाए। और दोनों एक दूसरे को आलिंगन देके रो रहे थे, चंद्रशेखर आचार्य परेशान हो जाते ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो है वो उनका वहां पर मिलन होता है। सनातन गोस्वामी अपना चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ पकड़कर सनातन गोस्वामी को घर के अंदर चंद्रशेखर आचार्य के लेके आते हैं और उनके शरीर की मसाज करना प्रारंभ करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे स्पर्श मत करो, मुझे स्पर्श मत करो, कितना गलीच हूं मैं, कितने समय से मैंने स्नान नहीं किया है, बाल नहीं कटाए, मैं गंदा हूं और मैं पतित हूं, नीच जाति का हूं, आप मुझे स्पर्श कृपया मत कीजिए। महाप्रभु उस समय कहते हैं प्रभु कहे तो मा स्पर्शी आत्म पवित्रिते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। प्रभु कहे तो मा स्पर्शी आत्म पवित्रिते, मैं स्वयं को पवित्र करने के लिए आपको स्पर्श कर रहा हूं और भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड तारिते, और आपका भक्ति इतना शक्तिशाली है कि आपके भक्ति के बल पर आप सारे ब्रह्मांडों को शुद्ध करा सकते हैं, मुझे तो क्या। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनका जो है वो गुणगान करते हुए श्रीमद् भागवत से कई सारे श्लोक वहां पर उद्रुक्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के आपके ऊपर असीम कृपा हुई है इसलिए आपका उद्धार उन्होंने किया हुआ है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कौन है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी कृपा जो है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए मेरा छुटकारा हो पाया है। महाप्रभु पूछते कैसे कैसे छूटे तुम जेल से, बंदी बने थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैं प्रयाग में रूप गोस्वामी अनुपम मिला हूं और उन्हें वृंदावन भेज दिया है, उन्होंने बताया था सारा वृत्तांत। तो फिर सनातन गोस्वामी सारा वृत्तांत बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है वो अपनी स्वयं की छुटकारा वहां से की है। और फिर इसके पश्चात जो है वो वहां पर महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बता देते हैं कि किस प्रकार से अभी सनातन गोस्वामी के बाल कटवाओ, इन्हें नहलाओ धुलाओ, इन्हें अच्छे वस्त्र दे दो। और फिर इस प्रकार से वहां पे नहलाया धुलाया जाता है, उन्हें प्रसाद दिलाते हैं चंद्रशेखर आचार्य, और फिर नए वस्त्र देते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे फटे वस्त्र ही पहनने हैं, तो वही वस्त्र रहते हैं। उसके पश्चात तपन मिश्रा के यहाँ पर प्रसाद के लिए आमंत्रण दिया जाता है, तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के लिए लेके तपन मिश्रा के यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद वगैरह वहां पर प्राप्त करने के लिए जैसे ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो तपन मिश्रा सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र प्रदान करते हैं। जैसे नए वस्त्र प्रदान करते हैं सनातन गोस्वामी उसे भी तिटकार देते हैं कि जी नहीं, मैं एक सन्यास धर्म का पालन करने के लिए यहां पर आया हूं, मैं पुराने वस्त्र ही पहनूंगा। महाप्रभु देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बार जो है वो कोई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी आ जाता है, तो तपस मिश्रा ने वहां पर जो है अपनी पुरानी धोती यूज की हुई सनातन गोस्वामी को दी थी और उसी एक धोती से उन्होंने अपने अंतर वस्त्र और बहिर्वस्त्र बना लिए थे। तो जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहां पे आता है और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे प्रसाद के लिए आइए और संपूर्ण प्रसाद हमारे यहाँ पर ही प्राप्त कीजिए, सनातन गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं करूंगा तो केवल मधुकरी करूंगा और जो मधुकरी में मिलेगा उतना ही मैं ग्रहण करूंगा, संपूर्ण भोजन मैं आपके यहां से नहीं ले सकता, मेरा संन्यास धर्म की हानि हो जाएगी। महाप्रभु जैसे सुनते महाप्रभु का मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है क्योंकि महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तगण में ऐसा वैराग्य प्रधान होता है और महाप्रभु उसको चाहते हैं। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे थे लेकिन घूर घूर के बीच बीच में उनकी जो ब्लैंकेट थी जो कंबल थी उसकी तरफ देखते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी को कुछ अजीबोगरीब लगा, ये ऐसा महाप्रभु ये कंबल की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो समझ गए क्योंकि जो श्रीकांत ने उनके बहनोई ने जो कंबल दी थी वो नई ऊन की बनी हुई कंबल थी। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने क्या किया वो गंगा नदी के किनारे चले गए वहां पर और नदी के तट पे एक बंगाली ब्राह्मण था वो उसकी फटी फूटी पुरानी कंबल वहां पर धो रहा था। तो सनातन गोस्वामी वहां पर चले जाते हैं अपनी ऊनी कंबल लेके और उसे कहते हैं कि मुझे एक मदद करेंगे। वो बोलता है क्या, मेरा आप ये नया ऊनी कंबल ले लीजिए और आपकी जो है वो फटी फूटी कंबल मुझे दीजिए। वो कहता है बस क्या आप भी इतने लगते हैं सभ्य साधु और आप भी मजाक उड़ा रहे मेरा, भले नया दे के पुराना कोई मांगता है क्या। सनातन गोस्वामी कहते नहीं मुझे चाहिए, मैं पुराने पुरानी के लिए मैं तरस रहा हूं। और फिर वो नया ले लेता है, सनातन गोस्वामी उसका पुराना वस्त्र ले लेते हैं और उसको निचोड़ के वही पहन के आ जाते हैं महाप्रभु के सामने। और जब महाप्रभु देखते हैं फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी को वो पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हारी कंबल कहाँ गई। तो सनातन गोस्वामी सारा वृत्तांत बताते हैं, इस प्रकार से जो है वो मैंने कंबल अदला बदली की है। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वही मैं सोच रहा था कब से कृष्ण ने पूरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर कर दी है 99%, लेकिन जो 1% तुम्हारी आसक्ति बच गई थी उस कंबल के प्रति वो क्यों नहीं निकाल रहे थे। क्योंकि जो वैद्य होता है, वैद्य कोई जो बीमार मरीज होता है उसका अंतिम ट्रेस लास्ट ट्रेस ऑफ द डिसीज इज ऑल्सो नॉट देयर, ही डोंट वॉन्ट टू कीप द लास्ट ट्रेस ऑफ द डिसीज इवन इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो इस प्रकार से जो अंतिम चीज है, अंतिम बीमारी का लक्षण है वो भी निकाला जाता है। तो ये तुम्हारी अंतिम आसक्ति थी वो भी कृष्ण ने निकाल ली है। फिर क्योंकि महाप्रभु कहे कि ऐसा महंगी कंबल पहन के जाना और मधुकरी मांगना ये विरोधाभास लगता है और लोग इसका परिहास करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की ही एक कृपा हुई है मेरे ऊपर और उन्होंने ये मेरी आखिरी आसक्ति भी जो है वो निकाल ली है। और इस प्रकार से महाप्रभु की भी संपूर्ण कृपा सनातन गोस्वामी के ऊपर हो जाती है और महाप्रभु उन्हें शक्ति संचारित करते हैं जिससे वो कई सारे प्रश्न उन्हें पूछ सके। और फिर सनातन गोस्वामी बहुत ही नम्र भाव में महाप्रभु से कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम को विषय कुपे पड़ी गोआइनु जन्म। वो कहते एक तो मैं नीच जाति का हूं, नीच संगी मेरा सब जो संग था वो भी नीच था और पतित अधम मैं इतना अधम हूं, इतना पतित हूं कि कु विषय कुपे पड़ी मैं कु विषय जो विषय वासनाओं के कुप में कुएं में मैं गिरा पड़ा था और मेरा सारा जन्म मैं व्यर्थ गवा रहा था इस प्रकार से। तो आप कृपा कीजिए और मेरे लिए क्या अच्छा है, मैंने क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य धर्म क्या है उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। और फिर सनातन गोस्वामी चार प्रश्न यहां पर पूछते हैं, के आमी के ने आमाय जारे तापत्र इहा नहीं जानी के मने ही त होए। के आमी पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, केने आमाय जारे तापत्रय, ये तीन ताप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं इसके बारे में जो है आप मुझे बताइए जिससे मेरा हित हो सकता है। साध्य साधन तत्व पूछी ते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं पूछना भी नहीं जानता हूं क्या। तीसरा प्रश्न, साध्य क्या है और चौथा प्रश्न, साधन क्या है। तो इस प्रकार से चार प्रश्न सनातन गोस्वामी पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या आमी, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, केने आमाय जारे तापत्रय, मुझे ये तीन तापों में क्यों परेशानी हो भुगतनी पड़ रही है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, साध्य का है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। और चौथा, साध्य प्राप्ति का उपाय, साधन क्या है जिसके द्वारा मैं उस साध्य को हासिल कर सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहे कि कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही हो चुकी है और इसके कारण तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तीन तापों के बारे में तो तुम भूल जाओ क्योंकि तुम उससे परे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हित के लिए मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो सर्वप्रथम महाप्रभु पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह मध्य लीला का अध्याय 20वां श्लोक संख्या 108 से लेकर के 123 तक महाप्रभु ये पहले दो प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम, मैं कौन हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। क्या है जीव का स्वरूप? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण का जो जीव है वो नित्य दास है। और कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, ये कृष्ण की तटस्था शक्ति का हिस्सा है। कृष्ण की तीन शक्तियां हमें पता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति जीव कहलाता है। कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ममई वामशो जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता के भगवान कहे कि जीव वास्तव में जीव कौन है, क्या है। और इस प्रकार से जीव का जो है वो संपूर्ण साइज भी बताया गया है। बाला ग्रसत वाघस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ सचानंत्याय कल्पते। इस प्रकार से जीव का संपूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन महाप्रभु यहां पर करते हैं और कृष्ण के तीन शक्तियों के बारे में बताते हैं। जो तटस्थ शक्ति जीव है, कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। ये भगवान की तीन शक्तियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना। कौन सी है तीन शक्ति? चित शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति यानी तटस्था शक्ति, और माया शक्ति जिसे कहते हैं बहिरंगा शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं। और यदि आप थोड़ा गौर करेंगे ना, कितने सारे संवाद हुए हैं अभी तक हमारे चैतन्य चरितामृत के सत्रों में। सबसे पहला संवाद हम लोग देखते हैं आदिलीला 7वां अध्याय, जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जब चर्चा हुई थी महाप्रभु की, उसमें भी महाप्रभु ने इन तीन शक्तियों का वर्णन किया था, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। उसके पश्चात मध्यलीला अध्याय 6 सर्व भट्टाचार्य उद्धार, उनके साथ जो संवाद हुआ था उसमें भी महाप्रभु ने इन्हीं तीन शक्तियों के बारे में बताया था। और अध्याय 8 मध्यलीला का रामानंद राय संवाद, वहां पर भी महाप्रभु ने इन तीन शक्तियों के बारे में कहा था। और मध्यलीला अध्याय 20 यहां पर भी सनातन गोस्वामी के साथ जब चर्चा हो रही है, महाप्रभु इन तीन शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो कल्पना कीजिए कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है और इतनी बार यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको यह होमवर्क रहेगा कि ये जो मैंने अभी बताए अध्यायों के नाम और नंबर, उसमें ये कहां पर आता है उसके श्लोक आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आपको बहुत आनंद होगा कि कैसे तीन शक्तियों के बारे में कहां कहां ऐसा वर्णन जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तीन शक्तियों के बारे में महाप्रभु ने सब कुछ बताया। अभी ये बताया मैं कौन हूं, इसका तो उत्तर हो गया। अभी हम लोग दुखी क्यों है, क्यों हम लोग परेशान है, त्रस्त है इस भौतिक संसार में, इसका जवाब महाप्रभु देते हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अनंत काल से भगवान कृष्ण को भूल गया है जीव और उनसे विमुख हो गया है। और इसलिए क्या होता है, अतएव इसलिए माया तारे देय संसार दुख। माया उसे त्रिविध तापों के द्वारा जो है वो उसे परेशान करती रहती है। कभी स्वर्ग उठाए कभी नर के डुबाए, दंडजन्य राजा यन नदी ते चुबाए। कभी उसे स्वर्ग में उठाया जाता है कभी नरक में डुबाया जाता है, जिस प्रकार से दंडजन्य राजा यन नदी ते डुबाए। राजा जिस प्रकार से दंड देने के लिए लोगों को, पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी, जिस प्रकार से नदी के अंदर डुबो दिया जाता था, परेशान होता था और फिर बाहर निकला जाता था और बाहर निकल के फिर तुरंत अंदर डाल दिया जाता था, फिर इस प्रकार से अंतिम सांस जब वो गिनेगा उस समय उसे बाहर निकलता जाएगा। तो तो इस प्रकार से जो बाहर निकल रहा है वो उसके लिए सुख के समान है और जब नदी के अंदर है वो उसके लिए दुख के समान है। महाप्रभु बता रहे इसी प्रकार से उसे कुछ समय के लिए नरक में डुबाया जाता है और कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में फेंका जाता है, क्योंकि ये जीव भगवान से अभी विलग हो गया है। इससे मुक्ति का कोई उपाय है या हमेशा केवल ऊपर नीचे घूमता ही रहे व्यक्ति, उसका उपाय का मार्ग तो कोई होगा? महाप्रभु उसका उपाय का मार्ग भी बताते हैं। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णन मुख होए से जीवन स्तरे माया तहारे छाड़े। साधु और शास्त्र की यदि कृपा यदि हो जाती है, साधु और शास्त्र इन दोनों की यदि कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है और व्यक्ति कृष्ण सन्मुख हो जाता है, कृष्णोन्मुख है, सही जीव निस्तरे, केवल उस व्यक्ति का निस्तार हो सकता है और माया तहारे छड़े, माया उस व्यक्ति को छोड़ देती है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं इस प्रकार से सातवें अध्याय में कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है माया को वो पार कर जाता है। वही यहां पर बता रहे हैं कि जो कि व्यक्ति साधु के संग में आता है और शास्त्र के संग में आता है वो व्यक्ति कृष्ण सन्मुख हो सकता है और उसी व्यक्ति का जो है वो निस्तार हो सकता है, बाकी किसी का निस्तार नहीं हो सकता है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। माया के कारण आच्छादित होने के कारण माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव को कभी भी स्वतः से कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वह माया में बंधित है। इसलिए जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण, और उनको उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है वो वेद और पुराण इनकी रचना की है। और तीन चीजें हैं जो जीव का उद्धार के लिए मदद कर सकती है। शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपना रे जानान कृष्ण मोर प्रभुत्राता जीवेर होयो ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभुत्राता, भगवान कृष्ण मेरे मालिक है, मेरे प्रभु है और मेरे उद्धारक है, ऐसा ज्ञान कभी व्यक्ति को हो सकता है जब ये तीन चीजों का जानान, इन तीन चीजों को वो जान जाएगा और उनकी शरण ग्रहण करेगा। शास्त्र गुरु और आत्मा, शास्त्र का अर्थ होता है जो शास्त्र बाह्य रूप से हमें भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितामृत आदि जो शास्त्र दिए हुए हैं। दूसरे है गुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और शास्त्रों के साथ जोड़ देते हैं। और तीसरा है आत्मा यानी परमात्मा के रूप में, जब हम सेवा करते हैं भगवान की इस प्रकार से शास्त्रों के आधार पर, तो परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो ज्ञान अंदर से परमात्मा प्रकाशित कर देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। भगवद्गीता दसवा अध्याय का दसवें श्लोक में भगवान वो भी बताते हैं कि किस प्रकार से वो बुद्धि हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। भगवान से ही सब कुछ आता है, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है और वो इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करा सकते हैं। तो बाहर से शास्त्र और गुरु और अंदर से परमात्मा जो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, इस प्रकार से इन तीनों से जब ज्ञान प्राप्त होता है तब वह जीव माया से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो हम मैं कौन हूं, मैं क्यों परेशान हूं और इस परेशानी से मुक्ति का रास्ता, ये सब कुछ महाप्रभु ने यहां तक बता दिया है। और अभी तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, साध्य क्या है और साध्य प्राप्ति का साधन क्या है, उसके बारे में श्लोक संख्या 124 से लेकर 164 तक महाप्रभु इसका ही वर्णन करेंगे कि क्या है सबसे बड़ा साध्य और उसका प्राप्ति का उपाय साधन। तो महाप्रभु सर्वप्रथम जो वेद है और उनका सार है और वहां पर क्या क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्यर साधन। वेद शास्त्र कहे, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, तीन चीजें कहते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसकी भी हमने चर्चा की आपको यदि याद होगा कई जगह पर, रामानंद राय के संवाद में भी आता है वो, ये भी सर्व भट्टाचार्य के संवाद में भी आया हुआ है। संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन वस्तुएं हैं संबंध आपको मैंने पहले ही बताया था, भगवान कौन है सर्वप्रथम, मैं कौन हूं और हमारा संबंध क्या है, वो है संबंध ज्ञान। अभिधेय मतलब उसका प्राप्ति का मार्ग, उस संबंध को कैसे पुनःस्थापित करें और उस संबंध को स्थापित करने के बाद हम लोग क्या कार्य करें, वो है अभिधेय। और उसके पश्चात जो मिलने वाला फल है उस स्थिति में कार्य करके, उसे कहते हैं प्रयोजन। और महाप्रभु यहां पर बताते हैं कृष्ण प्राप्य संबंध, भगवान कृष्ण को जानना यह संबंध है, और भक्ति प्राप्तेर साधन, और उनको प्राप्त करने का साधन क्या है, तो वो है भक्ति और एकमात्र भक्ति। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, अभिधेय का नाम क्या है, कृष्ण है संबंध, अभिधेय है भक्ति और प्रेम है प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बता दिया। संबंध क्या है, कृष्ण के बारे में जानना यह है संबंध, भक्ति के बारे में जानना और भक्ति करना यह है अभिधेय, अभिधेय नाम भक्ति और प्रेम नाम प्रयोजन। और प्रयोजन का नाम क्या है, प्रयोजन का नाम है प्रेम, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ शिरोमणि। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इसे कहा जाता है कृष्ण प्रेम, यह पंचम पुरुषार्थ जिसे कहते हैं पुरुषार्थ शिरोमणि। उस पुरुषार्थ शिरोमणि को कहते हैं प्रेम महाधन, ये महाधन के समान है। अभी महाप्रभु एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रदान करते हैं ये साधन, साधन प्राप्ति के बारे में। एक बहुत निर्धन व्यक्ति था जिसके पास कुछ धन ही नहीं था, बेचारा कंगाल हो कि यहां वहां घूमता रहता था। और एक बार एक सर्वज्ञ करके एक ज्योतिष उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि यार तू निर्धन जैसा क्यों घूम रहा है। वो कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं भिखारी हूं। फिर वो बताते हैं उसे कि अरे तुम्हारे पिता तो बहुत धनी थे लेकिन उनकी मृत्यु कहीं और हो गई है, इसलिए उन्हें आपको भी पता नहीं वो धन कहां पर है, कैसे रखा गया है, मैं आपको बता सकता हूं। तो महाप्रभु कहते हैं कि वो दुखी था क्योंकि उसे धन के बारे में जानकारी नहीं थी, जो बता ना कि जमीन के अंदर छिपाया हुआ धन, तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य ऐछे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। जिस प्रकार से वो सर्वज्ञ ज्योतिष ने बताया कि उसका धन कहां पर छिपा हुआ है, उसी प्रकार से ऐछे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे, उसी प्रकार से सारे वेद और पुराण हमारे मार्गदर्शन के लिए सज्ज है और बताते हैं कि हमारा जो असली धन है कृष्ण प्रेम वो कहां पर छिपाया हुआ है, वो हमें बताते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि वो ज्योतिष ने उस व्यक्ति को बताया। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप यदि नोट्स बना रहे तो एक सर्कल में लिखने का खजाना, एक सर्कल है जिसके अंदर जमीन के अंदर खजाना छिपाया हुआ है और उसको चार दिशाएं मार्क कर सकते हैं। सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, हम लोग मैप में मार्क करते हैं, ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण दिशा, और आपके उसमें लेफ्ट साइड में आएगी पश्चिम दिशा और राइट साइड में आएगी पूर्व दिशा। तो सर्कल के अंदर खजाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने मार्क कर लिया है। और अभी उस सर्वज्ञ ने वो निर्धन व्यक्ति को कैसा उपदेश दिया, वो कहा कि दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, तो दक्षिण दिशा क्रॉस हो गई। क्यों, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पे आएंगी, यदि तुम उस दक्षिण दिशा में जाएंगे तो तुम्हें वो मधुमक्खियां काट लेगी, तुम्हारा वहीं पे विध्वंस हो जाएगा, वहां पे मत जाओ। और उसके पश्चात कहते कि जो पश्चिम दिशा है वहां पर भी मत जाओ, वहां पर भी क्रॉस। पश्चिम दिशा में क्या है, एक यक्ष है, वहां पर जाएंगे तो यक्ष तुम्हें समाप्त कर देगा। और जो ऊपर थी अभी उत्तर दिशा, उत्तर को भी क्रॉस कर दिया, उत्तर दिशा में भी मत जाओ। क्यों, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा अजगर, अजगर जानते आप, सर्प का बहुत बड़ा रूप होता है उसे कहते हैं अजगर, वो अजगर तुम्हें गिलंकृत कर लेगा, तो उस दिशा में भी मत जाओ धन प्राप्त करना है। तो कहां जाना होगा, केवल एकमात्र एक दिशा कौन सी बच जाती है, केवल एक दिशा बच जाती है पूर्व, तो पूर्व की तरफ जाओ, टिक मार्क कर दिया महाप्रभु ने पूर्व। क्यों, महाप्रभु कहते हैं पूर्व दिके ताते माटी अल्प खूदिते धनेर झारी पड़ी बेका तोमर हाथ देते। पूर्व दिशा में तुम थोड़ा भी खुदाई करोगे तो तुरंत धन की संपूर्ण झारी तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। और महाप्रभु कहते हैं इसी प्रकार से ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी भक्ते कृष्ण वश है भक्ते तार भजी। इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं जो दक्षिण दिशा थी वो बताती है कर्म कांड का मार्ग, वो है कर्म, तो दक्षिण दिशा में आपने लिखा था वो था कर्म को क्रॉस, जो जो पश्चिम दिशा थी वो ज्ञान को क्रॉस, ज्ञान मार्ग को क्रॉस किया गया था, और जो उत्तर दिशा थी वहां पर जो है वो योग मार्ग को क्रॉस था, और जो पूर्व दिशा थी वो भक्ति मार्ग को सही में टिक था। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, इन तीन कर्म कांड का मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, इनको तिलांजलि देके भक्ते कृष्ण वश है, कृष्ण जो है केवल भक्ति के वश होते हैं, और भक्ते तार भजी, इसलिए भक्ति के द्वारा उनका भजन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा साधन महाप्रभु सुनाते हैं। और भागवत से कई सारे श्लोक वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। न साधयति माम योगो सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता, न साधयति माम योगो। हे उद्धव, कृष्ण 11वें स्कंद में भगवान से कहते हैं कि न साधयति माम योगो, मुझे योग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। न सांख्यम धर्म उद्धव, न सांख्य योग का पालन करके, न अच्छे से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लो, कितनी भी तपस्या क्यों न कर लो, और कितना अष्टांग योगी की भी क्यों न बन लो, यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जितना भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है ऐसा किसी साधन से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से वो जो धन उस निर्धन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो उसके सारे दुखों से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से इस कृष्ण प्रेम के धन को, झारी को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेगा भक्ति का प्रयास करने के पश्चात, उस व्यक्ति के सारे दुख जो है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन महाप्रभु कहे हैं कि इस भक्ति का उद्देश्य केवल दुखों को समाप्त करना नहीं है, वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन जो करेगा वो अलभ्य लाभ उसे कहा जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वेद शास्त्र कहे, जो पहले हमने श्लोक लिया था उसका भी पहला पंक्ति यही था, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेद शास्त्रों में कहीं पर भी इन्हीं तीनों की चर्चा की गई है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, और तीन हमारे लिए सबसे महाधन है, ये हमें हमारे हृदय के ऊपर अंकित करके लिख डालना चाहिए। सबसे बड़े महाधन हमारे लिए कौन से है, कोई स्विस बैंक का अकाउंट हमारे लिए महाधन नहीं है, या बहुत बड़ा सोने का और जमीन जुमलात का हमारे पास होना ये महाधन नहीं है। सबसे बड़े ये तीन महाधन महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सहित महाधन। संबंध कृष्ण, अभिधेय कृष्ण भक्ति, और प्रयोजन कृष्ण प्रेम, ये तीन हमारे लिए सबसे बड़े महाधन के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण, ऐसा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं। और सारे वेद जो है वो किस प्रकार से कृष्ण संबंध की चर्चा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो तीन शक्तियां हैं अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और भगवान कृष्ण जो है वह सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगों के स्रोत हैं और उन सब के आश्रय हैं, और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का महाप्रभु गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं कि कृष्ण का स्वरूप कैसा है। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। सर्व आदि, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है, उनसे सब कुछ आता है। सर्व अंशी, सारे अंश है लेकिन भगवान अंशी है, जिनसे सब कुछ अंश आते हैं। किशोर शेखर, और उनका जो नित्य वय है वो है किशोर वय। चिदानंद देह, उनका देह इस प्रकार से पंच महाभूत तत्वों का बना नहीं है, सत चित आनंद ऐसा उनका स्वरूप है। सर्व आश्रय सर्व ईश्वर, वो सारे जगत के आश्रय है और सबके ईश्वर है। भोक्ताहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, महाईश्वर सबके ईश्वरों के भी ईश्वर है, वो है भगवान कृष्ण। कौन है ये, कहां रहते हैं, क्या नाम है इनका। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम सर्वैश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। स्वयं भगवान कृष्ण कौन है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता का यह श्लोक उद्धृत करते हैं महाप्रभु और कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान जो है वो केवल कृष्ण है, गोविंद पर नाम, उनका नाम क्या है, गोविंद, सर्वैश्वर्य पूर्ण, सारे क्षण ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्य यश्चैव षण्णं भग इति गणा, जो पराशर मुनि षड ऐश्वर्य की परिभाषा किए हुए हैं वो सारे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है ये भगवान कृष्ण। और उनका रहने का ठिकाना क्या है, गोलोक नित्य धाम, वो अपने गोलोक में रहते हैं। और इस प्रकार से उसी भगवान कृष्ण को तीन तत्वों में जो है वो जाना जा सकता है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते श्रीमद् भागवत पहला स्कंद में इसका वर्णन आता है कि तीन स्वरूपों में कोई इनको देख सकता है या जान सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। कोई ज्ञान योगी होगा तो वो ब्राह्मण साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा ज्ञान योगी ब्राह्मण साक्षात्कार, अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त सकता है, लेकिन केवल भक्ति से जो है वो हम लोग भगवान साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। और भगवान साक्षात्कार ही परिपूर्ण साक्षात्कार है। भक्ते भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप, एक ही विग्रह है भगवान लेकिन अनंत स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भक्ते भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप, भक्ति के द्वारा ही भगवान का संपूर्ण अनुभव प्राप्त किया जा सकता है पूर्ण रूप से, बाकी सब भी है उससे किया जा सकता है लेकिन परिपूर्ण नहीं होगा। ब्रह्म तक चले जाएगा ज्ञानी, परमात्मा साक्षात्कार तक चला जाएगा योगी, लेकिन भगवान साक्षात्कार केवल भक्ति और केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध का प्याला रखा गया है तो हमारी सारी इंद्रियां दूध को पहचान सकती है, आंखों के द्वारा भी दूध को पहचान सकता है, देखा जा सकता है, स्पर्श करके भी हम लोग जान सकते हैं, कर्णों के बारे में सुनेंगे कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है तो भी दूध का ज्ञान हो सकता है, लेकिन परिपूर्ण आस्वादन यदि किसी को करना है दूध का तो जिह्वा एकमात्र साधन है जिसके द्वारा दूध का परिपूर्ण आस्वादन हो सकता है जिह्वा के द्वारा। उसी प्रकार से केवल भक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भगवान का परिपूर्ण रूप से आस्वादन किया जा सकता है, और बाकी सारे साधन का महाप्रभु यहां पर खंडन करके भक्ति एकमात्र साधन सर्वश्रेष्ठ है जो सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवान इनका साक्षात्कार हमें करा सकती है। और जो भगवान का रूप है उसके बारे में महाप्रभु और विस्तार से बताते हैं, और ये सबसे बड़ा सेक्शन है। संपूर्ण जितनी सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दी है, चैतन्य चरितामृत में सबसे बड़ी शिक्षाएं यदि कोई मिलती है तो चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी को ही शिक्षा, और वो मध्य लीला के आखिर तक चलेगी। केवल जो आखिरी अध्याय है मध्य लीला का 25वां वो छोड़ दो, लेकिन अभी जो 20वां अध्याय चल रहा है 21, 22, 23, 24 सारे सनातन गोस्वामी को शिक्षा महाप्रभु देने वाले आगे चल के। तो ये सब सबसे, और ये अध्याय भी इसमें 400 श्लोक है, कितना बड़ा अध्याय है। तो विस्तार से यदि किसी को शिक्षा मिली है और संवाद चला है तो महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के साथ शिक्षा ये वार्तालाप चला है। और सनातन गोस्वामी हमारे कौन से आचार्य है, मैंने आपको पहले सत्र में भी बताया था, जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे संबंध के आचार्य है सनातन गोस्वामी, और हमारे अभिधेय के आचार्य है रूप गोस्वामी जो कल हमने चर्चा की थी उनकी शिक्षा, और हमारे प्रयोजन के आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी जो अंत्यलीला में हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन आचार्य है और ये तीनों के बारे में हमें बताते हैं। तो इसलिए ये एक साधक के लिए, क्योंकि हमारा संबंध है ना, ये संबंध ज्ञान प्रस्थापित हो रहा है। कृष्ण के बारे में जितना अधिक जानकारी हम लोग रखेंगे उतना हमारा संबंध ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए यहां पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को विस्तार से कृष्ण तत्व की चर्चा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कृष्ण कैसे इस संसार में अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, तो ये जानना आवश्यक है। तो कहते हैं कि तीन रूप में सर्वप्रथम, ऐसा यदि आप चार्ट बनाएंगे तो कृष्ण तीन रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे ही तीन रूपे रहे न भगवान। इसका एक बहुत सुंदर चार्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको चाहिए तो उसको ग्रुप में भेज दूंगा। इसके अलावा इसको समझने का कोई दूसरा चारा नहीं है, एक तो मुझे उसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना होगा, पीपीटी में दिखाना होगा, नहीं तो मैं आपको इसको आपको भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। आप चार्ट समझेंगे ना तो ये पूरे 200-300 श्लोक आगे चलने वाले है वो पूरा उसका निचोड़ इस चार्ट में मिल जाएगा। तो ये तीन सर्वप्रथम जो है वो ऊपर रहते हैं। क्या है ये? सबसे पहला है स्वयं रूप, दूसरा है तदेकात्म रूप और तीसरा है आवेश रूप। तो भगवान कृष्ण इन तीन रूपों में ही पाए जाते हैं। कहीं पर कौन सा भी रूप क्यों ना लो, कौन सा भी रूप लो आप भगवान कृष्ण का, इन तीन के अलावा होगा ही नहीं। आप वेद खोल लो, उपनिषद खोल लो, पुराण खोल लो, कुछ भी ले लो आप, कौन सा भी आप एक अवतार का नाम बता दो, इन तीनों के अंदर ही पाया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर तीन बनते हैं, क्या है? स्वयं रूप, तदेकात्म और दूसरा है आवेश। तो जो स्वयं रूप है उसके नीचे आता है स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप मतलब भगवान का स्वयं का रूप, जो गोलोक धाम में नित्य लीला करते रहते वो रूप हो गया भगवान का स्वयं रूप। उसका ही एक अंश होता है जिसे कहते हैं स्वयं प्रकाश, मतलब भगवान के जो 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 स्वयं रूप था उसका ही एक जो है प्रकटीकरण, सेल्फ मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, वो है स्वयं प्रकाश। इसके दो प्रकार होते हैं, एक है प्राभव प्रकाश, दूसरा होता है वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश मतलब भगवान जैसे रासलीला किए थे तो कृष्ण के अलग अलग रूप विस्तारित हुए थे तो उन्हें कहते हैं प्राभव प्रकाश। या फिर जब द्वारका की 16,108 रानियां थी उनके साथ कृष्ण ने जो विस्तारित रूप किए थे वो है प्राभव प्रकाश। और दूसरा होता है वैभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश मतलब भगवान का ही विस्तारित रूप लेकिन वो थोड़ा अलग होता है, जैसे बलराम जी उसके उदाहरण के लिए। तो वैभव प्रकाश के हो जाते हैं बलराम जी। तो यह हो गया स्वयं रूप की श्रृंखला। अभी दूसरी श्रृंखला यदि देखते हैं वो है तदेकात्म। तदेकात्म क्या है? उसके भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार क्या होते हैं? एक है विलास, दूसरा है स्वांश। जो विलास होता है उसके भी दो भेद होते हैं, उसके भी प्राभव और वैभव। तो ये हो गया विलास। और उसके पश्चात आता है स्वांश। स्वांश जो है उसमें भगवान के 6 अवतार अलग अलग होते हैं, 6 प्रकार है स्वांश के। तो स्वांश के 6 प्रकार क्या है? 6 अवतार होते हैं भगवान के। सबसे पहला है पुरुष अवतार, दूसरा है लीला अवतार, तीसरा है गुण अवतार, चौथा है मनवंतर अवतार, पांचवा है युग अवतार और छठा है शक्त्यावेश अवतार। और जो शक्त्यावेश है वो भगवान का आवेश, जो तीसरा था ना तदेकात्म के बाद आता है आवेश। तो ये आवेश मतलब शक्त्यावेश। जो शक्त्यावेश है वो आवेश का ही एक रूप है। और शक्त्यावेश जो स्वांश से आ रहा है उन 6 में भी एक पाया जा सकता है। तो अभी जो पुरुष अवतार के बारे में महाप्रभु ने अच्छे से समझाया। कौन होते हैं पुरुष अवतार? 3 पुरुष अवतार है। कौन है? महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु। ये हो गए भगवान के पुरुष अवतार। दूसरे होते हैं भगवान के लीला अवतार। फिर आप सारे लीला अवतार कई सारे गिन लो, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, ये सब हो गए भगवान के अलग अलग लीला अवतार। उसके पश्चात है भगवान के गुण अवतार। गुण अवतार मतलब जो 3 गुणों के अधिष्ठाता देव के रूप में भगवान प्रकट होकर अवतार लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व, विष्णु सत्वगुण का प्रतिनिधित्व और शिवजी तमोगुण का प्रतिनिधित्व। इस प्रकार से ये हो गए गुण अवतार। तो पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार। उसके पश्चात आ रहे हैं मनवंतर अवतार। तो आपको याद होगा हमने मनवंतर की भी चर्चा की थी, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं। तो ऐसे 71 बार वो रोटेट होते हैं लेकिन मनु होते हैं 14। तो ये 14 मनवंतर के संबंधित भगवान के 14 अवतार होते हैं भिन्न भिन्न अलग अलग मनवंतर में। तो ऐसे ये मनवंतर अवतार हो जाते हैं। उसके पश्चात आते हैं युग अवतार। युग अवतार मतलब अलग युग में, संभवामी युगे युगे, तो अलग अलग युग में जो भगवान आते हैं सत्य त्रेता द्वापर कली, उनमें भी भगवान आते हैं। तो ये स्वांश के ही रूप होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से सुन रहे थे तो अचानक कलयुग के अवतार के बारे में भी महाप्रभु बता रहे थे। तो सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, महाप्रभु आप अलग अलग युगों में बता रहे, सत्ययुग में शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण तामगतः, तो ये सब सुनते सुनते बताते कलयुग में भगवान के अवतार कौन होंगे, इसका ये कैसे समझ सकता हूं मैं? तो महाप्रभु कहे, देखो जो अवतार होता है वो कभी अपने आप को अवतार नहीं मानता है, ये सबसे पहला चीज होता है। शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ये सब है। और उनके कुछ लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण, जो जो उनके उनके शारीरिक लक्षण प्रकट किए जाते हैं और वो क्या कार्य करेंगे वो सब लिखा गया होता है शास्त्र में। तो सनातन गोस्वामी कहते जितना मैंने शास्त्र पढ़ा है मैं जानता हूं कि कलयुग में कोई अजानुलंबित तो भुजो जिनके हाथ लंबे होंगे कमल के समान नेत्र होंगे गौर कांति उनकी होगी और वो कृष्ण प्रेम का दान प्रदान करेंगे, शायद ये कलयुग के अवतार है ना। महाप्रभु कहते हैं कि जगो चतुराई मत करो, आगे शक्त्यावेश अवतार के बारे में सुनाओ। और फिर महाप्रभु शक्त्यावेश अवतार के बारे में सुनाते हैं। शक्त्यावेश के भी दो प्रकार होते हैं, कौन से? एक होता है मुख्य और दूसरा होता है गौण। तो मुख्य शक्त्यावेश अवतार मतलब जिन भगवान ने स्वयं उनको शक्ति प्रदान की है प्रत्यक्ष रूप से, वो है मुख्य, जैसे सनक आदि, पृथु महाराज, व्यासदेव, ये है भगवान के साक्षात मतलब प्रमुख मुख्य शक्त्यावेश। और दूसरा होता है गौण मतलब भगवान अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, वो है भगवान की विभूति, कहा जाता है विभूति नाम से जाने जाते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है विभूति योग। तो ये अलग अलग विभूतियां, इसमें भगवान जो है वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये सारा भगवान का मुख्य तीन, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश, ये तीनों के बीच में भीतर सब कुछ सारे जो है वो वर्णन आता है। और इसमें फिर महाप्रभु ने कई सारे श्लोकों के रेफरेंस दिए हुए हैं, कई सारे उनके अलग अलग नाम होते हैं और फिर भगवान के अलग अलग मन्वंतर में अलग अलग उनके नाम दिए हैं, 14 के 14 के नाम दिए हैं। तो जो चतुर्व्यूह नारायण रूप होता है उसमें भी उनके 24 प्रकार बनते हैं और शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग हाथों में उनकी केवल स्थिति बदल जाती है तो उनका नाम बदल जाता है। ये सारा विस्तार से वर्णन इसमें जो है वो पाया जाता है। और इसके पश्चात भगवान की आयु और प्रमुख रूप से नित्य लीला, इसके बारे में महाप्रभु वर्णन करते हैं। किशोर शेखर धर्मी व्रजेंद्र नंदन प्रकट लीला करिवारे योबे करे मन। किशोर शेखर धर्मी, भगवान धर्मी का अर्थ होता है उनकी स्वाभाविक स्थिति। भगवान की स्वाभाविक स्थिति होती है कि वो किशोर वयीन है और वो व्रज के नंदन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब उनका मन हो जाता है वो इस धरातल पर भी अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। और फिर जो जन्म की लीला हो, पूतना उद्धार की लीला हो, ऐसी कई सारी लीलाएं वो इस धरातल पर भी भौम वृंदावन में प्रकट पड़ते हैं। कितने सारे ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड तर नाही का गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांड होयो प्रकटन। कितने सारे ब्रह्मांड है, हमने देखा था नित्यानंद तत्व निरूपण आदि लीला अध्याय 5 में कि किस प्रकार से इतने सारे कारणोदक्षय विष्णु उनके रोम छिद्रों से जो है वो कई सारे ब्रह्मांड, उनकी गणना ही नहीं है। इतने सारे ब्रह्मांड नाही तार गणन, उनकी गणना नहीं है। और इन ब्रह्मांडों में भगवान की किस ब्रह्मांड में कौन सी लीला चल रही है उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। श्रीमद भागवत के पहले स्कंद में जब शौनक आदि ऋषि को सुद गोस्वामी वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने, मैं आपको क्या गणना करूं, समंदर में जितनी लहरें उमड़ती है उतने सारे तो भगवान के अवतार होता है, लो कर लो गिनती, कोई गणना ही नहीं कर सकता। इतने ब्रह्मांड है, कौन से ब्रह्मांड में भगवान की कौन सी लीला कभी ना कभी तो चलती ही रहती है। नित्य लीला कृष्ण रे सर्व शास्त्रे कोई बुझीते ना पारे लीला के मने नित्य होए। सारे शास्त्रों में भगवान की लीला को नित्य लीला कहा जाता है, जो विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट हम लोग कहते हैं इस प्रकार से। तो ये नित्य लीला शास्त्रों में कही जाती है, लेकिन ये नित्य लीला क्यों कहती है, बुझीते ना पारी, समझ में नहीं आता क्यों नित्य कहा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं दृष्टांत देके आपको समझाता हूं। क्या है दृष्टांत? जैसे सूर्य घूमता रहता है और सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, सूर्य का उदय है, अस्त है, इसी प्रकार से कई जगह पर सूर्य का अस्त है। अभी अभी भारत में यदि सूर्यास्त होने का समय है तो अमेरिका में कहीं ना कहीं सूर्योदय है। तो इसी प्रकार से भगवान की लीला कहीं ना कहीं अप्रकट हो रही, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में चलती ही रहती है। इसलिए भगवान की लीला को नित्य लीला कहा जाता है। कोन ब्रह्मांडे कोन लीला रहय अवस्थान ताते लीला नित्य कहे आगम पुराण। कौन ब्रह्मांडे कौन लीला रहय अवस्थान, कौन से ब्रह्मांड में भगवान की कौन सी तो लीला अवश्य चल रही होगी, ताते इसलिए लीला नित्य कहे आगम पुराण। इसलिए सारे वेद पुराण भगवान की लीलाओं को नित्य लीला कह के बुलाते हैं। तो भगवान अपने गोलोक धाम में नित्य कैशोर वय में उपस्थित होते हैं, लेकिन बद्ध जीवों के ऊपर जीवे रकारने आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। बद्ध जीवों के उद्धार के लिए इस धरातल पर भी भगवान अपनी अपने आप को प्रकट कराते हैं ताकि उनके बारे में सुनकर जानकर जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। इनके बारे में जानकर भी कोई व्यक्ति, इनके बारे में सुनकर पढ़कर व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इसलिए भगवान इस धरातल पर आकर लीलाएं करते हैं। व्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम पूरी द्वये पर व्योमे पूर्णतर पूर्ण। कृष्ण के भी कविराज गोस्वामी बताते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं, तीन स्तर है कृष्ण के अस्तित्व के भी, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। जैसे वैष्णव के हमने देखे थे गुड बेटर बेस्ट, वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम, उसी प्रकार से कृष्ण भी तीन स्तरों पर पाए जाते हैं, पूर्ण कृष्ण पूर्णतर कृष्ण पूर्णतम कृष्ण, गुड कृष्ण बेटर कृष्ण बेस्ट कृष्ण। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाए, कृष्ण तो ऑलवेज बेस्ट है, लेकिन फिर भी उनका जो स्वरूप होता है उसमें भी स्तर पाए जाते हैं, पूर्ण कृष्ण पूर्णतर कृष्ण और पूर्णतम कृष्ण। जो पूर्ण कृष्ण है वो परव्योम वैकुंठ लोक में पाए जाते हैं, वो है पूर्ण कृष्ण। परव्योम में जो प्राप्त किए जाते हैं वैकुंठ धाम में, वो है पूर्ण कृष्ण। पूर्ण पूर्णतर कौन है, पूर्णतर है मथुरा और द्वारका में जो पाए जाते हैं, वो है पूर्णतर पुरी द्वि द्वि पुरी द्वये, इन दो पुरियों में जो पाए जाते हैं वो है पूर्णतर मथुरा द्वारका, और व्रज में जो पाए जाते हैं वो है पूर्णतम। तो पूर्णतम कृष्ण जो व्रजेंद्र नंदन वो है पूर्णतम कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है वो पूर्णतम पूर्णतर और पूर्ण ये दिया गया है ज्ञान, और महाप्रभु की कृपा से हमें देखिए सर्वश्रेष्ठ भगवान को एक्सेसिबल कर दिया है पूर्णतम कृष्ण, और सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति जिनके द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है वो हमें जो है वो प्राप्त हुआ है। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं। इतना सब बताने के बाद कविराज गोस्वामी कहते हैं अनंत स्वरूप कृष्ण नाही क गणन चाका चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। अनंत स्वरूप कृष्ण नाही गणन, कृष्ण के स्वरूप की गणना कौन कर सकता है भाई, कर ही नहीं सकते, अनंत है। मैं केवल क्या कर रहा हूं, शाकाचंद्र न्याय करे दिग्दर्शन। शाकाचंद्र न्याय आप सबको जानते होंगे, बचपन में जैसे माँ अपने बच्चे को चांद दिखाना चाहती है लेकिन वो जब दिखता नहीं तो कहती है वो देखो पेड़, वो पेड़ के उस तरफ देखो और मेरी उंगली की तरफ देखो, दिख रहा है चांद वहां देखो। तो शाखा को दिखा के चंद्रमा को दिखाया जाता है, वास्तव में वो चंद्रमा उतना छोटा नहीं होता है, वो चंद्रमा कितना बड़ा होता है लेकिन हम कितना उसे समझ पाते हैं, वो शाखा के नजदीक है, देखो वहां देखो वहां देखो, ऐसा बताते हैं। तो शाखा चंद्र न्याय बता के मैं केवल आपको इंगित कर रहा हूं, दिग्दर्शन दे रहा हूं, कृष्ण के अवतारों का गणन हो ही नहीं सकता, इतना विस्तार है। कोई कोई भला कोई समुद्र की कितनी लहरें उसका गणन कर सकता है, नहीं कर सकता। भला कोई आकाश में कितने तारे हैं उतना गणन कर सकता है, नहीं कर सकता है। भला कोई अपने सर के ऊपर कितने बाल है उसकी गिनती कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से भगवान का अस्तित्व उनका स्वरूप उनकी गणना उनके अवतार करना एक बद्ध जीव के लिए लगभग असंभव है। तो केवल कहते हैं कि मैं दिग्दर्शन कर रहा हूं कविराज गोस्वामी, और कहते हैं इतना सारे तत्व आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या सुना रहे हो, इसका तो लाभ आपको जरूर मिलना ही चाहिए। क्या लाभ है, इहा ये सुने पड़े से ही भाग्यवान कृष्णेर स्वरूप तत्वेर हयो की छू ज्ञान। यहा यही सुने, जो कोई इसको सुनता है पढ़े पढ़ता है सही भाग्यवान। हम सब लोग भाग्यवान हैं क्योंकि हमें ये सब विषय के बारे में सुनने को और कहने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सही भाग्यवान। और क्या होगा, कृष्णेर स्वरूप तत्वेर होयो किछु ज्ञान। कृष्ण के स्वरूप को पूर्णता से तो जाना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मात्रा में तो जो पढ़ेगा और सुनेगा उसे जो है वो ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से इस अध्याय का कविराज गोस्वामी विराम देते हैं, और जो अध्याय का पहला श्लोक है यहां पर जो पहला श्लोक कविराज गोस्वामी रचना किए हैं वो सारे अध्याय का सारांश के रूप में नहीं किए हैं, वो कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक की रचना मेरे लिए की है। क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् तद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं जिनके अद्भुतम ऐश्वर्यम, जिनके ऐश्वर्य अद्भुत है, जो जो अभी हमने ऐश्वर्य चर्चा की है, वो सारे ऐश्वर्य किनके हैं? महाप्रभु के ही है। वास्तव में अनंत अद्भुत इनके ऐश्वर्य है। और नीचोपि यत् प्रसादात, कितना नीच व्यक्ति भी क्यों ना हो मेरे जैसा, यत् प्रसादात, जिनकी कृपा के कारण जो है वो भक्ति शास्त्र प्रवर्तक है, जो भक्ति के शास्त्रों का प्रवर्तक और भक्ति के शास्त्रों का प्रचार कर सकता है। तो कितना भी नीच व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो वो भक्ति के शास्त्रों का ज्ञान का प्रसार कर सकता है। ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं जिनके ऐश्वर्य जो है वो अनंत है। तो इस प्रकार से यहां पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है, बीसवा। और जैसा हमने कहा 19 अध्याय में जो रूप गोस्वामी इनको जो शिक्षा प्रदान कर की थी, और खास करके जो भक्ति लता बीज है उसको बढ़ाना और उसको कैसे संभाल के रखना, और जो प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है कि मैं इतने सालों से भक्ति के साधन में लगा हूं लेकिन फिर भी जो कृष्ण प्रेम की एक बूंद भी अभी तक नहीं मिली हुई है, उसका कारण क्या है, यह यदि आपको जानना है तो आने वाले रविवार 19 तारीख को सुबह 8 से 9 जो हमारा भागवत सत्र होगा उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। और जो संबंध ज्ञान है उसको और विस्तार से, भगवान श्री कृष्ण का दो विभूतियां, उनकी ऐश्वर्य शक्ति और उनकी माधुर्य शक्ति, ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, इसका प्रारंभ महाप्रभु 21वें अध्याय में करेंगे। उसको यदि आपको सुनना है तो हम मिलेंगे कल ठीक शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।